अरपा रेडियो डॉट कॉम की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।
वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आज तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे, अथवा भारत उनका मूल निवास स्थान था या नहीं। लगभग 2000 ईसा पूर्व में भारत में आर्य सभ्यता का विकास हुआ। उनके मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि थे। उन्हें नगर संस्कृति का कोई अनुभव नहीं था। वे प्रकृति की शक्तियों, वर्षा एवं विद्युत के देवता इंद्र, वायु के देवता और सूर्य की पूजा करते थे। इनका विश्वास था कि ये देवता समय पर वर्षा करते हैं, उनकी फसलों को पकाते हैं और शत्रुओं को पराजित करने में उनकी सहायता करते हैं। इन देवताओं की प्रशंसा में लिखे हुए सूक्तों का संग्रह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना सिंधु नदी के तट पर हुई। पंजाब से वे पूर्व की ओर बढ़े और गंगा की घाटी में फैल गए। फिर वे दक्षिण और विंध्याचल तक पहुंच गए। इसके बाद वे भारत के अन्य भागों में फैले। उन्होंने यहाँ अनार्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार जिस भारतीय संस्कृति का विकास हुआ उसमें आर्य व अनार्य संस्कृति का समन्वय हुआ। आर्य प्रारंभ में छोटे छोटे जनपदों में बंटे हुए थे जो आपस में लड़ते रहते थे। कालांतर में छोटे छोटे से राज्य स्थापित हो गए। इनमें कुछ में राजा और कुछ में अभिजात्य वर्ग के व्यक्ति शासन चलाते थे। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में ये राज्य बड़े राज्यों में परिणित हो गए। इनमें कुछ राज्य और कुछ गणराज्य थे। ये 16 राज्य महाजन पद कहलाते थे। इस समय मगध का प्रदेश महत्वपूर्ण हो गया। कुछ समय पश्चात मगध इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। इसी समय ईरानियों ने भारत पर आक्रमण कर कुछ स्थानों पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। फलस्वरूप इन दोनों देशों में घनिष्ठ राजनैतिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए। साम्राज्यों की स्थिति। मगध के राजा बिंबिसार और अजात शत्रु ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से संघर्ष किया और 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में नंदवंश ने मगध में राज किया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आजकल पटना कहते हैं। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व अंतिम चरण में नंदवंश के राजाओं ने मगध पर शासन किया। उस समय एक तो सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की शक्ति कम हो गई थी, दूसरी ईरानी साम्राज्य का पतन हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अव्यवस्थित परिस्थिति का लाभ उठाया और अपने मंत्री कौटिल्य की सहायता से भारत में पहले बड़े साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के शासनकाल में सुदूर दक्षिण भाग के सिवाय लगभग संपूर्ण भारत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पराजय के पश्चात एरिया, आर्कोशिया और परोपनिषद के प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंग बन गए। मौर्य साम्राज्य का अधिकतम विस्तार मानचित्र में दिखाया गया है। मौर्य काल 322 से 184 ईस्वी पूर्व में भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म, जिसका उदय पहले ही हो गया था, इस काल में सर्वत्र फैला। यही इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अशोक के राज्यकाल के पश्चात साम्राज्य का पतन होने लगा। इस समय बहुत छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए और विदेशियों के आक्रमण हुए। विदेशियों में सबसे पहले यूनानियों के आक्रमण हुए, जो वैक्टिया के शासक थे। यूनानियों ने पंजाब और सिंधु के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। यूनानी संपर्क का भारतीय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा। कला में गंधार शैली का विकास उसी संपर्क का परिणाम था। इस युग का सबसे महान यूनानी राजा मिनेंडर या मिलिंद था। उसने 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में राज किया। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न में उसके प्रश्नों और एक बौद्ध दार्शनिक द्वारा दिए गए उत्तरों का वर्णन मिलता है। यूनानियों के आक्रमण के बाद शकों के आक्रमण हुए, जिन्होंने बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य को समाप्त कर पश्चिम भारत में मालवा तक अधिकार कर लिया। उनका एक राजा रुद्र दामन था, जिसने सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था की। दूसरे आक्रमणकारियों की भांति शकों ने भी यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। मध्य एशिया के आने वाले आक्रमणकारियों में कुषाण भी थे, जो ईसा की पहली सदी में आए थे। कुषाण राजाओं में सबसे महान कनिष्क था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि 78 ईस्वी पूर्व उसी समय शक संवत का प्रारंभ हुआ। कनिष्क ने भारत के मध्य एशिया तक फैले हुए अपने विस्तृत साम्राज्य में पुरुषपुर या पेशावर को राजधानी बनाकर लगभग 40 वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के साम्राज्य के परिणाम स्वरूप ईरान, यूनान और रोम की संस्कृतियों के कुछ तत्व भारतीय संस्कृति के अंग बन गए। इसके कारण भारत और अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रसार में योगदान दिया, जिससे बौद्ध धर्म का मध्य एशिया में प्रचार हुआ और वहां से ये चीन, कोरिया और जापान तक पहुंच गया। तीसरी सदी में कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में 3 राज्य थे। पांड्य अपनी राजधानी मदुरा से भारत के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भागों में शासन करते थे। चोल कारोमंडल तट पर शासन करते थे। वर्तमान केरल के अधिकांश भाग में चेरों का शासन था। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासन सातवाहनों का था। गौतमी पुत्र शातकर्णी के राज्यकाल में सातवाहन काल की सांस्कृतिक परंपराएं राष्ट्रकूटों, चालुक्यों और पल्लवों के राज्यकाल तक चलती रहीं। पल्लव राज्य की स्थापना 3 सदी में हुई। उसकी राजधानी कांची थी। इसी काल में उड़ीसा, जिसे कलिंग कहते थे, में खारवेल नाम का शक्तिशाली राजा हुआ। इन राज्यों में भारत की सांस्कृतिक एकता का विकास हुआ। इस समय कांची सांस्कृतिक शिक्षा तथा बौद्ध और जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। अजंता एलोरा के गुफा, मंदिरों और चित्रों का बनाना भी सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ। इन राज्यों ने रोम के साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का भी विकास किया। इस काल में विदेशी व्यापार का भारतीयों के आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। चेन्नई के निकट आरिक मेडु व्यापार का केंद्र था। वहीं जो उत्खनन हुए हैं उनसे प्राचीन काल में भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के परिणाम स्वरूप वहां अनेक भारतीय बस्तियां भी बनी, जिन्होंने उन देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब दक्षिण भारत में ये विकास हो रहा था, उस समय उत्तर भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। 4 शताब्दी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने समस्त भारत पर आक्रमण किया और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और विजय प्राप्त की। स्कंदगुप्त के राज्य के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा। यद्यपि गुप्त साम्राज्य इतना विस्तृत न था जितना कि मौर्य साम्राज्य, तथापि गुप्त काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण 5वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण थे। 6 शताब्दी के आते आते ये राज्य समाप्त हो चुका था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जो सर्वशक्तिशाली बनने के लिए आपस में लड़ते थे। दिल्ली के निकट थानेश्वर के राजा हर्ष ने उत्तर भारत के बड़े भाग पर अधिकार करके इसे संगठित कर लिया, किंतु वो दक्षिण के चालुक्य राजाओं को परास्त न कर सका। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए। यद्यपि गुप्त राजाओं के बाद अनेक छोटे छोटे निर्बल राज्य स्थापित हुए, तथापि इस काल में भी सांस्कृतिक उन्नति होती रही। प्राचीन भारत में प्रशासन। वैदिक काल में अधिकतर राज्यों में राजतंत्र प्रणाली थी, किंतु राजा निरंकुश शासक नहीं होता था, क्योंकि राज्य का स्वरूप अब भी जनतांत्रिक था। जब राज्य बड़े हो गए तो राजा की शक्ति भी बढ़ गई, किंतु वो निरंकुश नहीं हुआ। राजा धर्म का सेवक समझा जाता था। धर्म का अभिप्राय उन सभी नियमों से था जिनका मूल स्रोत ईश्वरीय समझा जाता था और जो रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते थे। जब साम्राज्य की स्थापना हुई, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। गणराज्यों में पहले अभिजात वर्ग के व्यक्ति शासन चलाते थे। ये गणराज्य साम्राज्यों के युग में नष्ट हो गए। राजा की शक्ति और विशेषाधिकार में वृद्धि हो गई। वो शासन का सर्वोच्च अधिकारी था और समस्त शासन पद्धति का स्वयं संचालन करता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी वो स्वयं ही करता था। राजा के अधिकारों पर अब किसी प्रकार का अंकुश न रहा। इसी काल में संसार के विजेता अर्थात चक्रवर्ती राजा का आदर्श भी विकसित हुआ, परंतु इस आदर्श में विश्व विजय की भावना ही निहित न थी, बल्कि इसका अर्थ ये भी था कि चक्रवर्ती राजा धर्म के अनुसार राज्य का शासन चलाए। मौर्य काल में लगभग समस्त भारत का शासन एक राजा चलाता था। प्रांतों में जो राज्यपाल शासन चलाते थे वे साधारणतः राजकुमार होते थे। राज्यपाल की सहायता के लिए उनके अधिकारियों का अधिक्रम था। राज्य का उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा के लिए सुव्यवस्थित शासन चलाना ही न था, अपितु समाज कल्याण के कार्य करना भी था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा का जो आदर्श स्वरूप बताया गया है, उसके अनुसार प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण निहित है। कुषाणों का राज्य विस्तृत था। उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था विकसित की जिसमें प्रांतों की प्रायः स्वायत्त इकाइयां थीं। वे प्रांत मिलकर एक संघीय राज्य बनाते थे जिसमें केंद्र की शक्ति बहुत कम हो गई। कुषाण राजा अपने को राजाधिराज कहते थे। सातवाहन राज्य में मौर्यों की केंद्र प्रधान शासन पद्धति चलती रही, क्योंकि उनके प्रदेश पहले मौर्य साम्राज्य के अंग रह चुके थे। गुप्त शासन पद्धति प्रांतों के माध्यम से पूर्णतया सुव्यवस्थित थी। राजवंशों में बार बार परिवर्तनों से ऊपरी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई, परंतु गांव का प्रशासन ज्यों का त्यों बना रहा। ग्राम स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित हुए गांव के मुखिया और बड़े बूढ़ों को गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण अधिकार मिले थे। वे लोक कल्याण के कार्य करते थे, स्थानीय झगड़े निपटाते और राज्य के करों को इकट्ठा करते थे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशु ही उनके मुख्य धन थे। मनुष्यों का मूल्य भी पशुओं में आंका जाता था, किंतु धीरे धीरे कृषि महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया। वस्तुतः ज्यों ज्यों वे गंगा की घाटी में फैले, त्यों त्यों उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ। विस्तृत जंगलों को काटकर साफ किया गया। लोहे के उपयोग ने भूमि को खेती योग्य बना दिया। कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसायों का भी विकास हुआ। गांव की जमीन और अर्थतंत्र में बढ़ई का कार्य विशेष महत्वपूर्ण था, इसलिए बढ़ई का बड़ा आदर किया जाता था। तांबे, कांसे और लोहे का काम करने वाले का भी बहुत महत्व था। कुम्हार, चमड़ा रंगने वाले, जुलाहे आदि अन्य बहुत से कारीगर भी गांव में रहते थे। जब इन व्यवसायों का विकास हुआ तो कुछ व्यक्ति इन कामों में दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशल हो गए और उनकी बनाई गई वस्तुओं की मांग गांव से बाहर भी होने लगी। इस प्रकार व्यापार का प्रारंभ हुआ। 600 ईस्वी पूर्व के लगभग व्यापार और उद्योग के केंद्र के पास अनेक नगर स्थापित हुए। इनमें से कुछ राजगृह चंपा, काशी, कौशाम्बी, तक्षशिला, भूग कच्छ और वैशाली थे। ईरानी, यूनानी और अन्य विदेशियों के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी देशों और मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। भारतीयों ने जब दक्षिण पूर्व के देशों में उपनिवेश बनाए तो उन देशों के साथ भी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, जैसे ब्रह्मदेश या बर्मा के साथ सूती कपड़ा, हाथी दांत और लोहे का काम। ऐसे अनेक उद्योगों का विकास हुआ। जो कारीगर विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाते थे उन्होंने अपनी श्रेणियां बना ली। ये श्रेणियां कालांतर में उपजातियां बन गईं। बाद में दक्षिण भारत के राज्यों और रोम साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन और पश्चिमी रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने के पश्चात रोम के साथ व्यापार कम हो गया, किंतु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और अफ्रीका के पूर्वी तट से व्यापार में वृद्धि हो गई। इसी काल में इस भावना का उदय हुआ कि समुद्र द्वारा विदेश यात्रा से मनुष्य अपवित्र हो जाता है, और जो अपनी जातीय पवित्रता बचाए रखना चाहते हैं उन्हें ऐसी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। इस भावना के कारण व्यापार की कुछ ना कुछ हानि तो अवश्य हुई होगी। प्राचीन काल से अब तक भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती रही है कि प्रारंभ में आर्यों ने अपना विभाजन क्षत्रिय यानी योद्धा, ब्राह्मण यानी पुरोहित और वैश्य यानी कृषक इन वर्णों में कर लिया। भारत के अनार्य निवासियों को आर्य लोग दास कहते थे। इन दासों की गणना शूद्र वर्ण में की गई। बाद में इनकी संतानों एवं आर्य तथा दासों के विवाहों से उत्पन्न संतानों को भी शूद्र वर्ण में रखा गया। आरंभ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का समाज में एक समान स्तर था। बाद में जैसे जैसे कर्मकांड का महत्व बढ़ा, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों का भी समाज में स्तर ऊंचा होता गया। वैश्यों में से बहुत से खेती करना छोड़ जमींदार और व्यापारी हो गए। बाद में कृषि कार्य अधिकतर शूद्रों द्वारा किया जाने लगा। वैदिक साहित्य के अनुसार भी ब्राह्मण की उत्पत्ति सृष्टा यानी ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से और वैश्य की उसकी जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई। आरंभ में ये विभाजन कर्म के आधार पर था, पर धीरे धीरे ये व्यवस्था जन्म पर आधारित होती चली गई। बाद में लिखे गए गृह सूत्रों ने जाति प्रथा को पहले से भी अधिक कड़ा बना दिया। धर्मशास्त्रों ने इस कठोरता और विषमता की प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाया। विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। अपराधी को जाति के अनुसार एक ही अपराध के लिए कम या अधिक दंड दिया जाता था। धर्मशास्त्रों ने जाति प्रथा को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पवित्रता का अंग मान लिया। शूद्रों के साथ व्यवहार करने के संबंध में बहुत कठोर नियम बनाए गए, किंतु कुछ बातों में बहुत कट्टरता नहीं आई। उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह कर सकता था, किंतु कुछ समय बाद ये प्रथा भी लुप्त हो गई। जाति से बहिष्कृत व्यक्तियों का एक अलग वर्ण बन गया। चीनी यात्री फाहयान गुप्त काल में भारत आया था। उसने इसके विषय में लिखा है, चार जातियों वाली इस व्यवस्था में भी प्रत्येक जाति में अनेक उपजातियां थीं। उपजातियां व्यवसायों पर आधारित थीं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थीं। हिंदू समाज में इन उपजातियों का महत्व बाद में बहुत बढ़ गया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यवसाय और विवाह संबंधी नियम निर्धारित किए जाते थे। जैन और बौद्ध धर्म के उदय और आक्रमणकारी विदेशियों के भारत में बस जाने के कारण जाति प्रथा के नियमों में कुछ ढील आ गई, किंतु 10वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण के समय जाति प्रथा के नियम कठोरता से लागू किए जाने लगे, जो आधुनिक काल में शिथिल होना प्रारंभ हुए। प्राचीन काल में भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक सिद्धांत पर आधारित थे। सबसे बड़ी उम्र वाला पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। पुत्र, पुत्रवधु और उनके बालक अपने माता पिता के साथ रहते थे। साधारणतया लोग एक ही विवाह करते थे। वैसे बहुविवाह की अनुमति थी। राजा तथा धनी व्यक्ति कई पत्नियां रखते थे। कुछ एक ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें एक स्त्री के कई पति होते थे। दक्षिण भारत में कुछ समाज मातृसत्तात्मक थे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आश्रम व्यवस्था पर आधारित था। जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया था। पहला, ब्रह्मचर्य। वो काल जब विद्यार्थी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। दूसरा, गृहस्थ आश्रम। वो काल जब व्यक्ति विवाहित जीवन बिताता था। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम, जब व्यक्ति त्याग का जीवन बिताता और गृहस्थ बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करता था। चौथा, संन्यास आश्रम, जब मनुष्य अपने परिवार और समाज को छोड़कर तपस्वी के रूप में पूर्ण आत्मसंयम का जीवन बिताता था। ये आश्रम व्यवस्था निम्न वर्ग पर लागू नहीं की जाती थी, क्योंकि उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। अन्य सबके लिए ये जीवन का नियम था। स्त्रियां पैतृक संपत्ति की स्वामिनी नहीं हो सकती थीं। वैसे वे बहुत बातों में पूर्ण स्वतंत्र थीं। विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। साधारणतया वो देवर के साथ विवाह कर सकती थी। कुछ बातों में स्त्रियों का स्तर बाद में शूद्रों के समान हो गया। परिवार में पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों का अधिक मान होने लगा। धर्म और दर्शन। प्राचीन काल में अनेक भारतीय धर्मों और दर्शन प्रणालियों का विकास हुआ। हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक विश्वासों, आर्यों तथा आर्येतर लोगों के धार्मिक विश्वासों का समन्वय होने पर विविध प्रकार के धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं का विकास हुआ। ये सब मिलकर हिंदू धर्म का अंग माने जाते हैं। आर्यों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का वर्णन वेदों में है। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवता मानकर पूजा जाता था, किंतु कोई मंदिर नहीं थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य यज्ञ करते थे। यज्ञ के दौरान लिए जाने वाले कर्मकांड की जटिल प्रणाली का विकास हुआ। इस काल में दर्शन के विभिन्न शाखाओं का भी उद्भव हुआ। इनमें से वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेविक नामक कालक्रम से भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं बन गईं। वेदांत दर्शन उपनिषदों पर आधारित था। उसने एक लंबे समय तक भारतीय चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उसने अनेक सूक्ष्म विचारों का विवेचन किया, जो विश्व के स्वरूप, आत्मा के अस्तित्व और विश्व और आत्मा के संबंधों के बारे में थे। भारतीय दर्शन की कुछ शाखाएं अनीश्वरवादी भी थीं। महाराज अग्रसेन की विचारधारा। महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन ने समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब संपूर्ण भारत राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से अस्त व्यस्त था, ऐसी परिस्थिति में महाराजा अग्रसेन ने अपनी दूरदृष्टि, दृढ़ता और मानवीय सहृदयता के द्वारा राजनैतिक समाज और सामाजिक व्यवस्था निर्मित करने का सफल प्रयास किया। महाराजा अग्रसेन ने हरियाणा राज्य में अग्रोहा गणराज्य की स्थापना की। इनके शासनकाल के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिलते नहीं हैं, लेकिन जनश्रुतियां, किंवदंतियां तथा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पूर्व उत्तरी भारत के राजस्थान राज्य का प्रतापनगर गणराज्य के राजा धनपाल की 6 पीढ़ी में राजा वल्लभ सेन के घर इनका जन्म हुआ था। इसी खुशी में राजा वल्लभ सेन ने यमुना नदी किनारे अग्रपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की, जो आज आगरा के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा अग्रसेन की माता विदर्भ की राजकुमारी थीं, जिनका नाम भागवती देवी था। महाराजा अग्रसेन के माता पिता भगवान आशुतोष यानी शिव के परम भक्त थे। इनके पिता राजा वल्लभ सेन अत्यंत धार्मिक, प्रजावत्सल, वीर, साहसी और पराक्रमी थे, परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं होने का उनको दुख था। भगवान आशुतोष की भक्ति और साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को अभिजित नक्षत्र के शुभ योग में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें बाद में महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना गया।
महाराजा अग्रसेन का शासनकाल द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। अल्पायु में ही बालक अग्रसेन को उज्जैनी के प्रसिद्ध ऋषि तांड्य के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया था। 14 वर्ष की आयु में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर उज्जैनी लौटे। किशोर अग्रसेन की विनम्रता, शालीनता, सदाचार, उदारता, निडरता, साहसी वृत्ति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता ने माता पिता और परिवार में एवं नागरिकों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। महाराज वल्लभ सेन अपने पुत्र अग्रसेन को शासन के सभी अंगों, गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली में पारंगत कर देना चाहते थे। अग्रसेन अपने पिता वल्लभ सेन के साथ महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर के पक्ष में सम्मिलित हुए। अग्रसेन अभिमन्यु के हमउम्र थे। इस युद्ध में उन्हें अर्जुन से वीरता, भीम से साहस, युधिष्ठिर से धर्मपरायणता अभिमन्यु से उत्साह और श्री कृष्ण से कौशल, दूरदृष्टि, जटिल समस्याओं के समाधान करने की कला ग्रहण की। इस युद्ध में महाराज वल्लभ सेन वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में पितृत्व कुंद सेन ने प्रताप नगर पर अपना कब्जा कर लिया। अग्रसेन ने अपने अनुज शूरसेन और माता भगवती के साथ महर्षि गर्ग के आश्रम में शरण ली। महर्षि गर्ग के सहयोग से अग्रसेन ने नए राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी अग्रोहा को बनाया गया। महाराजा अग्रसेन गणतांत्रीय राज्य प्रणाली के जनक, सहकारिता व समाजवाद के सिद्धांतों के प्रणेता थे। उस समय वंशानुगत शासन चलता था। महाराज अग्रसेन ने अपने राज्य में 18 गणराज्य बनाए। महाराज अग्रसेन एक योग्य शासक ही नहीं, वरन कुशल समाज संगठक भी थे। मनुष्य मात्र की समानता में उनका विश्वास था। वे मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। अग्रोह राज्य में सभी जाति एवं धर्मों के लगभग 1,00,000 परिवार रहते थे। सभी को अपना अपना धर्म पालन करने एवं उनकी उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उनके राज्य में न बेकारी थी, न ही बेरोजगारी थी, न कोई गरीब था, न कोई दुखी। समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित उन्होंने एक परिपाटी बनाई थी कि जो भी नया परिवार अग्रोहा राज्य में आकर बसता था, उसे प्रत्येक परिवार 1 रुपया और 1 ईंट देता था। इस प्रकार मकान निर्माण के लिए ईंट एवं व्यापार के लिए धन सहज ही मिल जाता था। इससे आगंतुक की आर्थिक स्थिति राज्य में पहले से रहने वाले लोगों के समान बन जाती थी। पारस्परिक सहयोग की इस परिपाटी से राज्य में एक आदर्श पद्धति का जन्म हुआ और समाजवाद की प्रारंभिक नींव रखी गई। अग्रोहा में जल सुविधा के लिए तालाब खुदवाया गया, किंतु जल रिसाव के कारण ये खाली हो जाता था। महाराजा अग्रसेन ने प्रभूत मात्रा में तांबा क्रय कर उसकी परत संपूर्ण सरोवर में बिछवाई। इस प्रकार जल संकट का स्थायी समाधान निकाला गया। महाराजा अग्रसेन अकारण हिंसा के विरोध में थे, अतः उन्होंने पशुवध से सर्वथा इनकार कर दिया। अग्रसेन ने स्पष्ट ये कह दिया कि पशु बलि हिंसा है, त्याज्य कर्म है। उनका स्पष्ट मत था कि यज्ञादि सारे आयोजन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं, और हम कर्मकांड को निमित्त बनाकर हिंसा करेंगे तो शेष समाज उसी को आदर्श मानकर अति हिंसक बन जाएगा। अंत में बिना पशु बलि के पूर्णाहुति दी गई। दूसरी ओर आत्मरक्षा या राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अग्रसेन ने स्वीकार किया तथा सभी के लिए सैन्य शिक्षण, शस्त्र शिक्षण अनिवार्य कर दिया। महाराजा अग्रसेन ने अपने शासनकाल में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शांति, सद्भाव को महत्व दिया। वे अग्रवाल जाति के प्रवर्तक थे, लेकिन उन्होंने जाति और धर्म से परे होकर एक जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था कायम की। इस तरह से वे जनहित और बंधुत्व की प्रेरणा के अग्रणी स्रोत हैं। अपने 18 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक शासन करते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु का राज्याभिषेक करके तीर्थ यात्रा पर चले गए और अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष तीर्थ स्थानों पर बिताए। 6ठी सदी ईसा पूर्व धार्मिक जागृति। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया। ये चिंतन यज्ञ और वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध थे, क्योंकि वैदिक कर्मकांड में अब पहले जैसी सादगी नहीं रह गई थी। इस युग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सशक्त और प्रमुख धर्मों के रूप में विकसित हुए। भारतीय संस्कृति के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैन धर्म। जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर इतिहास प्रसिद्ध हैं। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में चाहे वो पत्थर हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो या पशु हो, सब में आत्मा विद्यमान है। इसी कारण इस धर्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। जीव मात्र को किसी प्रकार का कष्ट न होना ही सच्ची अहिंसा माना गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। उन्होंने सदाचार तथा सद्व्यवहार पर जोर दिया है। महावीर के निर्वाण के कई वर्षों बाद जैनों में दो समुदाय, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर हो गए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधु को वस्त्रों का भी परित्याग कर पूर्ण अपरिग्रही होना आवश्यक है। इस मत के मानने वाले दिगंबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने पर भी साधु मुक्त हो सकता है। इस मत के अनुयायी श्वेतांबर कहे गए। आज भी श्वेतांबर मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर परंपरा के तीर्थंकों की मूर्तियां वस्त्र रहित होती हैं। बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 6 शताब्दी में महान धर्म संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध भी हुए। वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनकी जीवन कथा, गाथाओं, धार्मिक साहित्य ग्रंथों और चित्रों और मूर्तियों में मिलती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला, दुख है। दूसरा, दुखों का समुदाय। तीसरा, दुखों का कारण तृष्णा है। और चौथा, दुखों से बचने का उपाय है। दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, अर्थात तृष्णा का वश में करना। आवागमन के बंधन से मुक्ति या दुख की समाप्ति के लिए मनुष्य को सद्मार्ग से परिचित होना चाहिए, जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है। इसमें 8 बातें सम्मिलित हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाक। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक आजीव। छठवा, सम्यक व्यायाम यानी श्रम। सातवां, सम्यक स्मृति। और 8वां, सम्यक समाधि। बुद्ध ने मध्यम वर्ग के महत्व पर बल दिया। उनके अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए मनुष्य को दोनों प्रकार की अति से बचना चाहिए। न तो उग्र तप करना चाहिए और न ही सांसारिक सुखों में लगे रहना चाहिए। महावीर की भांति बुद्ध ने भी अहिंसा का उपदेश दिया, किंतु उन्होंने इस पर इतना बल नहीं दिया जितना महावीर ने दिया था। बुद्ध ने वेदों को प्रमाण नहीं माना और जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक विषमताओं को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति संघ में शामिल हो सकता है। बौद्ध संघ बहुत ही अनुशासनबद्ध और जनतांत्रिक संगठन थे। वर्ष भर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए घूमते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही वे विहारों में रहते थे। सम्राट अशोक ने भारत और एशिया के अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता दी। कालांतर में ये धर्म श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी और मध्य एशिया, तिब्बत और चीन तथा वहां से कोरिया और जापान में फैल गया। बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं बाद में हिंदू धर्म का अंग बन गईं। यहां तक कि बुद्ध विष्णु के अवतारों में शामिल कर लिए गए। आगे चलकर बुद्ध के अनुयायी 2 संप्रदायों, हीनयान और महायान में बंट गए। हीनयान संप्रदाय ने आष्टांगिक मार्ग के प्रत्यक्ष अनुसरण द्वारा व्यक्ति के निर्वाण पर बल दिया। दूसरी ओर महायान संप्रदाय ने बुद्ध की पूजा ईश्वर के रूप में शुरू कर दी और इस बात पर बल दिया कि न सिर्फ भिक्षु और भिक्षुणियां बल्कि सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू होने से भारतीय मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ। गुप्त काल तक वैदिक काल की तुलना में धार्मिक संस्थानों और आचरणों में काफी परिवर्तन हो चुका था। ब्राह्मण धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू थे देवत्रयी या त्रिमूर्ति। इस देवत्रयी में ब्रह्मा संसार का सृष्टा, विष्णु रक्षक और शिव संहारकर्ता थे। ब्राह्मण धर्म अब वैष्णव, शैव और शाक्त 3 संप्रदायों में बंट गया। कृष्ण पूजा विकसित होने लगी। कृष्ण का विष्णु के साथ तादात्म्य स्थापित हो गया। कुछ क्षेत्रों में लोग मातृदेवी के भी उपासक बने रहे। मातृदेवी की पूजा हड़प्पा काल में आरंभ हुई। बाद में इस देवी की पूजा शक्ति के कल्याणकारी रूप में उमा, भवानी, अन्नपूर्णा तथा पाप नाशनी रूप में काली, कराली, चामुंडा, चंडी आदि नाम से होने लगी। ब्राह्मण धर्म उच्चतम सार्वभौम आत्मा ईश्वर या परम ब्रह्म के अस्तित्व की बात बतलाता है, परंतु वह प्रत्येक उपासक को वह जिस रूप में चाहे ईश्वर की पूजा करने की छूट देता है। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म एक देववादी धर्म है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार मानव जीवन के तीन मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य धर्म है। धर्म से अभिप्राय गुण से है जो अच्छे कर्मों का स्रोत है। दूसरा लक्ष्य अर्थ है। अर्थ से अभिप्राय उन सभी नैतिक व जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह है जो धार्मिक ग्रंथ का अनुसरण करके प्राप्त की गई हों। तीसरा लक्ष्य काम है। काम का अर्थ इंद्रिय सुख के उपयोग से है, किंतु ये उपयोग पार्श्विक सुख से भिन्न अर्थात शिष्ट तथा सुसंस्कृत मन के अनुरूप होना चाहिए। इन तीनों लक्ष्यों के सही अनुसरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण धर्म की एक अन्य विशेषता वर्णाश्रम है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वर्ण विधान का पालन करना चाहिए और विभिन्न आश्रमों के लिए निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चार वर्ण और चार आश्रम क्रमशः समाज के सैद्धांतिक विभाजन और जीवन की आदर्श व्यवस्था रूप में माने गए हैं। ब्राह्मण धर्म कभी एक रूप स्थिर और अपरिवर्तनशील नहीं रहा है। वो अपने को बदलती हुई परिस्थितियों और जीवन दशाओं के अनुरूप ढालने में समर्थ हुआ है। अपने विविध सिद्धांतों और कर्मकांडों के कारण ब्राह्मण धर्म ने अनेक संप्रदायों को जन्म दिया। कालक्रम में इन संप्रदायों ने पूजा की अपनी विधि विकसित की, परंतु प्रत्येक समुदाय के सदस्य अपनी व्यवस्था का अनुसरण करते हुए भी दूसरों के विचारों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। बौद्ध धर्म की तरह ही वैदिक धर्म की भी कुछ शाखाओं का प्रसार भारत से बाहर विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ है। धर्म ग्रंथों की संख्या बड़ी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद हैं। वेदांग ब्राह्मण तथा उपनिषद भी इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। भगवद गीता भी एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। हिंदुओं के जीवन शैली पर महाकाव्यों महाभारत और रामायण धर्मशास्त्रों और पुराणों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। प्राचीन भारतीयों की सांस्कृतिक उपलब्धियां भाषा और साहित्य। भारत में आजकल बोली जाने वाली भाषाओं में से अधिकतर अपने मूल रूप में प्राचीन काल में विद्यमान थीं। उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, भारतीय आर्य भाषा तथा द्रविड़ भाषाएं। प्राचीन आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कालांतर में ऋग्वेद की संस्कृत में कुछ परिवर्तन हुए। संस्कृत साहित्य की भाषा वैदिक संस्कृत से भिन्न है। संस्कृत के साथ साथ अनेक भाषाओं का विकास हुआ जिन्हें प्राकृत कहते हैं। संस्कृत की अपेक्षा इनकी व्याकरण और ध्वनि अधिक सरल थी। पाली, मगधी, शौरसेनी प्राकृत के विभिन्न रूप हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में मिलता है। इनको मौखिक रूप से ही याद किया जाता है। जैन और बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के पश्चात प्राकृत भाषाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ। इन धर्मों की मौखिक शिक्षाएं प्राकृत थीं। मौर्य काल में शासन के कार्यों के लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। अशोक के अभिलेख में भी प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है। भारत के लिए ब्राह्मी लिपि अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। चौथी सदी ईसवी पूर्व से ईसा की चौथी सदी के बीच भारत के दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत गाथाओं के आधार पर रचे जा चुके थे। वर्तमान रूप में आने से पहले इन महाकाव्यों में अनेक परिवर्तन हुए। जब प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने अपनी व्याकरण की पुस्तक लिखी, संस्कृत साहित्य का पूर्ण विकास हुआ। इसका रूप परिष्कृत हुआ और ये विद्वानों की भाषा बन गई। शिक्षित ब्राह्मण और क्षत्रिय संस्कृत ही बोलते थे। साधारण मनुष्य और स्त्रियां शूरसेनी और अन्य प्राकृत बोलियां बोलते थे। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए। ब्राह्मी लिपि में अनेक प्रादेशिक परिवर्तन हुए और इस प्रकार प्रादेशिक लिपियों का मूल रूप बना। शिलाखंडों के अतिरिक्त ताम्र पत्रों पर भी अभिलेख लिखे गए। लिखने के लिए तालपत्र ताड़ का पत्ता और भोजपत्र भी काम में लाए जाते थे। जब अरब और तुर्क भारत में आए तब से लिखने के लिए कागज का भी प्रयोग होने लगा। चौथी सदी ईस्वी में ही अनेक महत्वपूर्ण नाटक भारतवर्ष में रचे गए। सबसे प्रसिद्ध नाटककार अश्वघोष भास और कालिदास थे। कालिदास सबसे महान भारतीय कवि भी थे। गद्य साहित्य में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र विशेष कृति थी, जिसका बाद में अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। दक्षिण भारत में ईसवी सन के प्रारंभ में लगभग तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना हुई। इसमें अनेक कविताएं तथा महाकाव्य लिखे गए। वास्तुकला एवं अन्य कलाएं। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के पश्चात लगभग 1000 वर्ष तक भारतीय वास्तुकला तथा अन्य कलाओं में भी कोई प्रगति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा के लोगों की उपलब्धियों को बिल्कुल भुला दिया गया। इस काल में न कोई सुव्यवस्थित मकान, न नगर, न ही मूर्ति मिली है। वैदिक काल के मृदभंडों में भी कुछ कलात्मक विशेषताएं नहीं मिलती। चौथी सदी ईस्वी पूर्व के अंतिम चरण में मौर्य काल में कला के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। अशोक के समय बौद्ध वास्तुकला का भी विकास हुआ। बौद्ध वास्तुकला के सुंदर उदाहरण चैत्य और विहार हैं। चैत्यों में पूजा के लिए बौद्ध उपासक इकट्ठे होते थे और विहारों में भिक्षु निवास करते थे। अशोक स्तंभ के सुंदर शीर्ष इस काल की मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण हैं। मौर्य काल के पश्चात बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। ये स्तूप सुंदर कलाकृतियां हैं। तोरण द्वारों पर सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण करके उन्हें सजाया गया है। इनमें बुद्ध की जीवन गाथा और बौद्ध साहित्य के अनेक सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं। अनेक चट्टानों को काटकर गुफाएं भी चैत्य बनाए गए। इसी काल के अंत में अजंता की गुफाओं के प्रारंभिक भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। मौर्य काल के बाद मूर्तिकला की गंधार और मथुरा शैलियों का विकास हुआ। गंधार शैली में यूनानी और रोमन मूर्तिकला का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। मथुरा शैली ने एक देसी रूप विकसित किया। गंधार और मथुरा दोनों कला शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं और विषयों का निरूपण किया गया। सातवाहन राजाओं ने भी चैत्यों और विहारों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। सबसे अधिक भव्य चैत्य में उसी काल के हैं। अमरावती में एक भव्य स्तूप बनाया गया। यद्यपि ये स्तूप नष्ट हो गया, किंतु अमरावती की मूर्तिकला के अधिकतर उदाहरण अब भी विद्यमान हैं। भारतीय कला के इतिहास में गुप्त काल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस काल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। अजंता एलोरा के अधिकतर भित्ति चित्रों का निर्माण इसी काल में हुआ। गुप्त काल में ही ब्राह्मण मंदिरों की वास्तुकला प्रतिस्थापित की जाती थी। अधिकतर मंदिर पत्थर से बनाए जाते थे। उनमें एक ही गर्भगृह होता था जिसमें देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। बाद में उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर बनाए गए थे जो गुप्तकालीन मंदिरों के अनुरूप ही थे। मंदिरों को भूमि का अनुदान भी मिला और देश के आर्थिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान हो गया। चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष, गणित आदि विषयों पर अनेक शास्त्र लिखे गए। इन्हीं के कारण विज्ञान के विषयों की नींव पड़ी। विज्ञान का विकास। प्राचीन भारत की विभिन्न चिंतन धाराओं में ब्रह्मांड को 4 या 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश में बांटा गया है। इन चिंतन धाराओं ने ये प्रतिपादित किया कि तत्व अणु से बने हैं और तत्व में अणुओं के संयोजन का तरीका अंक स्वरूप का निर्धारण करता है। मगर ये सिद्धांत प्रयोग पर नहीं बल्कि सहज बुद्धि और तर्क पर आधारित थे। यज्ञ के लिए शुभ दिन और समय ज्ञात करने की आवश्यकता ने भारतीयों को ज्योतिष के सिद्धांत जानने की प्रेरणा दी। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में दिन का ठीक ठीक मान निकालने और ग्रहण हिसाब लगाने की ठीक विधियां बतलाई गईं। प्राचीन भारत के दो महान ज्योतिष शास्त्री थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। राशि चक्र संबंधी विज्ञान का भी विकास किया गया और त्रिकोणमिति का उपयोग ज्योतिष के अध्ययन में किया गया। गणित का प्रारंभिक उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ के लिए वेदियां बनाने की आवश्यकता हुई, जिस कारण रेखा गणित की नींव पड़ी। धीरे धीरे गणित का विकास हुआ। भारतीयों ने ज्ञान के इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे अंकों की दशमलव प्रणाली, उनका स्थानीय मान और शून्य का ज्ञान। वैदिक यज्ञों के लिए वेदी निर्माण के नियम जिन ग्रंथों में दिए गए हैं उन्हें शूल्व सूत्र कहते हैं। इनमें ऐसा वर्णन मिलता है कि इनके लेखक पाइथागोरस के प्रमेय और वर्गों के दोगुना करने के सिद्धांत से भली भांति परिचित थे। भारत के गणितज्ञ वर्गमूल ठीक ठीक निकाल सकते थे। गुप्त काल से शताब्दियों पूर्व भारतीय गणित की दो शाखाएं, पाटी या पट्टी गणित जिसे अंक गणित कहते हैं और बीज गणित प्रचलित थी। दशमलव प्रणाली और अंकों के स्थानीय मान का प्रयोग किया जाता था। शून्य के अंक का भी प्रयोग किया जाने लगा और इसे बिंदु कहा जाता था। चारों वेदों में एक अथर्व वेद में पर्याप्त रूप से रोगों के लक्षण और रोगों का वर्णन मिलता है, किंतु उसमें उनका संबंध नहीं बतलाया गया है। रोगों की औषधियों, जल और जादू के मंत्र से रोगों की चिकित्सा का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। यूनानी साहित्य में भारतीय चिकित्सा और औषधियों के नुस्खों का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चिकित्सा का यूनानी चिकित्सा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। प्राचीन काल में भारतीय आयुर्वेद की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध नाम सुश्रुत और चरक का आयुर्वेद के सिद्धांत, जिसका भारत में आज तक प्रयोग किया जाता है, वो इस काल में पूर्ण रूप से विकसित होते जा रहे थे। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के नियमों और शुद्ध भोजन पर बल दिया जाता था। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो गई थी। इस काल में अनेक रोगों में कठिन शल्य क्रिया की जाती थी। मेहरोली स्थित लौह स्तंभ और देश के 12 भारतीय तलवारों के महत्व के विषय में किए गए उल्लेखों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में धातु विज्ञान ने निपुणता प्राप्त कर ली थी। शासन व्यवस्था, अर्थशास्त्र, साहित्य कला और विज्ञान सभी क्षेत्रों में प्राचीन भारत की संस्कृति का विकास हुआ। भारत की विभिन्न जातियों ने एक दूसरे से और आक्रमणकारियों से भी बहुत कुछ सीखा। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम देशों के निवासियों ने भारतीय ज्ञान को प्राप्त करके अपने ज्ञान व संस्कृति का विकास किया। स्मरणीय बिंदु। भारत में लौह युग 1000 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हुआ। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। वेदों की भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ऋग्वेद काल में आर्य गांवों में निवास करते थे। ऋग्वेद काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वैदिक युग में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उपनिषदों का संकलन 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। अरण्यक में जीवन के उच्च स्तर मूल्यों एवं आध्यात्मिक बातों का वर्णन है। प्राचीन भारत का प्रथम साम्राज्य मगध था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध साम्राज्य की स्थापना अजातशत्रु और बिंबिसार ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत को एकीकृत कर पहले बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में हाक संवत प्रारंभ किया। चोल, चेर और पांड्य ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे। चौथी शताब्दी के बाद गुप्त शासकों ने भारत को पुनः एकीकृत किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 18 राज्यों को जीता। इस विजय को धर्म विजय कहा गया।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।